आज है अगस्त महीने की 16 तारीख दिन बृहस्पतिवार। सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। बीजेपी नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत नाजुक। दिल्ली के एम्स अस्पताल ने जारी किया बयान। उत्तर प्रदेश के औरैया में दो साधुओं की हत्या के बाद तनाव।
बीभत्स तरीके से हत्या की गई है, मतलब एक में तो रॉड का प्रयोग किया गया है और सिर पे एक में चाकू का प्रयोग किया गया है और एक जो है मरणासन्न स्थिति में है।
केरल में बाढ़ की वजह से अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत।
इस समय केरल में हालात बहुत खतरनाक है। 10 और 12 दिनों के बारिश के बाद अभी केरल के बाढ़ में कम से कम 60 लोग अब तक मर चुके हैं।
होंगे खेल समाचार और समाचार पत्रों की सुर्खियां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत नाजुक बनी हुई है। एम्स की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही है और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि काबुल में एक शिक्षा संस्थान के पास हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 48 लोगों की मौत हो गई है। इस धमाके में 60 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। पुलिस का कहना है कि हमलावर शहर के पश्चिमी हिस्से से आया और संस्थान में दाखिल हुआ। संस्थान में घुसने के बाद उसने छात्रों के बीच पहुंचकर धमाका कर दिया। ये शैक्षिक संस्थान शहर के उस इलाके में है जो शिया बहुल है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि इस बम धमाके के पीछे किसका हाथ था, लेकिन कथित इस्लामिक स्टेट के लड़ाके पहले भी शिया समुदाय पर हमला कर चुके हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हीदर का कहना है कि ये हमला सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश थी। उन्होंने कहा, The United States government strongly condemns and is appalled by today's suicide attack. अमेरिका इस हमले की कड़ी निंदा करता है। ये चिंता का विषय है। इस हमले से प्रभावित लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। ये धमाका सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का एक प्रयास था। ये थे हीदर के शब्द। इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कॉन्टो ने जेनेवा में मोरांडी ब्रिज हादसे के बाद उत्तरी लिगुरिया प्रांत में 12 महीने के आपातकाल स्थिति की घोषणा कर दी है। कॉन्टे ने कहा कि कैबिनेट राष्ट्रीय आपातकालीन कोष से मदद देने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा, आज हुई मीटिंग में लिगुरिया प्रांत के गवर्नर जियोवनी तोती की सिफारिशों पर चर्चा हुई। हमने लिगुरिया प्रांत में 12 महीने के लिए आपातकाल लागू करने की मांग को स्वीकार कर लिया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अब बहुत से विदेशियों के लिए न्यूजीलैंड में घर खरीद पाने का सपना संभव नहीं हो सकेगा। न्यूजीलैंड की संसद ने बहुत से विदेशियों के लिए न्यूजीलैंड में घर खरीदने पर रोक लगा दी है। इस रोक का मकसद प्रॉपर्टी को और किफ़ायती बनाना है। ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के साथ मुफ्त व्यापार सौदों के चलते इन देशों के नागरिकों को इस नियम से दूर रखा गया है। न्यूजीलैंड मौजूदा समय में आवास संकट से गुजर रहा है। चीनी निवेशक न्यूजीलैंड में संपत्ति के सबसे बड़े खरीदारों में से हैं। सूडान में एक नाव पलट जाने से करीब 20 बच्चों की मौत हो गई है। नाव पर करीब 40 से ज़्यादा बच्चे थे। नील नदी पार करने के दौरान यह हादसा हुआ। स्थानीय हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक ने बताया कि नाव एक बड़े लकड़ी के लट्ठे से जा टकराया और उसके बाद इंजन टूट गया, जिसे नाव पर सवार बच्चे बुरी तरह डर गए और सभी नाव के एक ओर भाग गए, जिसे नाव डूबने लगी। हाईस्कूल में पढ़ने वाले करीब 12 बच्चे तो भागने में कामयाब रहे, लेकिन 20 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई। तुर्की के विदेश मंत्री मेवतुल कावुसोग्लू ने कहा है कि जब तक कोई खतरा नहीं है, वो अमेरिका से बात करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका और तुर्की के बीच बढ़ते तनाव की वजह एंड्रयू ब्रूसन नाम के एक पादरी हैं जिन्हें तुर्की ने साल 2016 के नाकाम तख्ता पलट के साजिशकर्ताओं के संपर्क होने के आरोप में हिरासत में लिया था। बीबीसी समाचार।
ये बी बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। आप हमें रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन सकते हैं इस समय लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने एक बयान जारी करके कहा है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। वाजपेयी एम्स में बीते लगभग 9 हफ्ते से भर्ती हैं। इस खबर पर और जानकारी के लिए भूमिका राय स्टूडियो में मौजूद हैं।
जी संदीप, बीती रात एम्स की ओर से एक प्रेस रिलीज या हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया। इसमें कहा गया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत बीते 24 घंटों में बिगड़ती ही जा रही है और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली यानी वेंटिलेटर पर रखा गया है। अपने श्रोताओं को हम बता दें कि इस हेल्थ बुलेटिन के जारी होने के कुछ घंटे पहले ही कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी को देखने एम्स गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी की उम्र 93 साल है और वो करीब 9 हफ्तों से एम्स में हैं। उन्हें इसी साल जून में किडनी में संक्रमण और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बीती रात जब वाजपेयी की तबीयत बिगड़ने की खबर आई तो उसके बाद बीजेपी के कई नेता उन्हें देखने के लिए एम्स पहुंचे और वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है।
बीजेपी नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत नाजुक है। दिल्ली के एम्स अस्पताल ने इस संबंध में एक बयान जारी किया है। जानकारी दे रही थी भूमिका राय। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में 2 साधुओं की हत्या से इलाके में तनाव पैदा हो गया है। मंदिर में सोए दोनों साधुओं की कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी, जबकि गंभीर रूप से घायल एक अन्य साधु का सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये साधु पिछले कुछ समय से इलाके में कथित तौर पर होने वाली गोकशी जैसी घटनाओं का विरोध कर रहे थे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं समीर आत्मज मिश्र।
बुधवार सुबह औरैया जिले के विधोना थाना क्षेत्र के एक मंदिर के 3 पुजारी चारपाई पर बंधे हुए लथपथ अवस्था में पड़े थे। 2 साधुओं की वहीं मौत हो चुकी थी और तीसरे को गंभीर अवस्था में पहले स्थानीय अस्पताल में और बाद में सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। औरैया के पुलिस अधीक्षक नागेश्वर सिंह का कहना था कि हत्या बहुत ही निर्मम तरीके से की गई थी।
2 लोगों की मौत हो गई है और एक जो है मरणासन स्थिति में, बताया जा रहा है मरणासन स्थिति में, तो यहाँ विधोना गए थे, वहाँ से रेफर हुए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, विभत्स तरीके से हत्या की गई है। मतलब एक में तो रॉड का प्रयोग किया गया है और सिर पे, एक में चाकू का प्रयोग किया गया है और एक जो है मरणासन्न स्थिति में है, सैफई में रेफर है। जो जो चीज़ें उठ रही हैं हत्याकांड की वजहों के बारे में, तो उनको हम सुन रहे हैं और उनको गंभीरतापूर्वक हम ले रहे हैं और उन पर पूरा जांच करके जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। जो है
इस घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया, पूरे बाजार को बंद करा दिया और कई दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई। यही नहीं, आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर भी पथराव किया। पुलिस ने जवाब में आंसू गैस छोड़कर भीड़ पर काबू पाया। लोगों के गुस्से को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी को बुलाया गया। जिले के आला अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को शांत कराया, लेकिन लोगों का आक्रोश कायम है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि तीनों साधुओं को चारपाई से बांधकर बड़ी बेरहमी से उन्हें मारा गया।
ये सर यहाँ पे तीनों पुजारी थे, कल शाम को एक परसों अखंड रामायण बैठ हुए थे, कल शाम को खत्म हुई, उसका कल हवन वगैरह हुआ और रात में ये घटना हो गई। एक लोगों का लज्जा राम नाम था, ये बाहर रात के रहने वाले हैं, एक लोग खितौरा के थे, एक लोग बीवीपुर के थे, काफी समय से रह रहे थे लज्जा राम भैया। तीनों लोगों को हाथ बांधकर 10-12 लोगों ने हादसा किया। देखिए शासन प्रशासन जब मौत होने के बाद यहाँ पे आए, जानकारी मेरे रिश्तेदारों हमसे फोन किया, तब मैं तुरंत घटनास्थल पे आया।
स्थानीय लोगों के मुताबिक ये तीनों साधु मंदिर में पुजारी थे और इलाके में कथित तौर पर होने वाली गोकशी का लंबे समय से विरोध कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक नागेश्वर सिंह भी इस आशंका को खारिज नहीं करते।
जो कहा जा रहा है हम उसको गंभीरता से लेते हैं, तो हम जांच का विषय है हमारे और उसके हम उसकी एविडेंस इकट्ठा करेंगे। उस बिल के बारे में जो आरोप लग रहा है उसके बारे में हम एविडेंस साथ इकट्ठा करेंगे।
इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की निंदा करते हुए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मारे गए साधुओं के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायल पुजारी को 1 लाख रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को 48 घंटे के भीतर दोषियों का पता लगाकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल दोषी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने भरोसा जताया है कि वो साल 2022 तक किसी भारतीय को अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य तय समय सीमा के भीतर हासिल कर लेगा। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि ये भारत के सिर्फ सम्मान का मामला नहीं है, बल्कि इससे कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
बेंगलुरु के इसरो हेडक्वार्टर्स अंतरिक्ष भवन में हर कोई हैरान हो गया जब स्वतंत्र दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी कि भारत अंतरिक्ष में एक इंसान को 2022 में भेजेगा। वो इसलिए हैरान हो गए क्योंकि केंद्र सरकार आज तक अंतरिक्ष में इंसान को भेजने का कोई निर्णय ही नहीं लिया है। हाँ, ये सही है कि पिछले थोड़े वर्षों से इसरो ऐसे प्रोजेक्ट्स ले रही है जो अंतरिक्ष में इंसान को भेजने के लिए काम आएंगे। इस तरह के प्रयोगों के मद्देनजर सवाल ये उठा है कि क्या एक या दो इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने से देश को क्या फायदा होगा। हमने ये सवाल इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के शिवन से पूछा। उन्होंने कहा,
नाउ दिस एडवांटेज फॉर कंट्री, द कंट्रीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेवल इज गोइंग टू इंक्रीज द एंटायर कंट्री, नॉट ओनली वन लेवल।
इस कार्यक्रम से देश के विज्ञान और तकनीक में बहुत विकास होगा, चाहे वो मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या बायोलॉजिकल सिस्टम्स हो। इसको एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तौर पर लिया जाएगा और इससे बहुत सारी वैज्ञानिक संस्थाओं और उद्योगों को भाग लेने का अवसर मिलेगा। ये एक राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का भी मामला है क्योंकि हम फक्र से कह सकते हैं कि हम भी वैज्ञानिक और तकनीक के लिहाज से किसी भी विकसित राष्ट्र जैसे हैं। ये थे डॉक्टर के सिवन के शब्द। इस कार्यक्रम पर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने देश का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया था, उन्होंने अंतरिक्ष में मानव को भेजने का विरोध किया था। उनका मानना था कि अंतरिक्ष कार्यक्रम राष्ट्र विकास पर ज्यादा केंद्रित होना चाहिए। बहरहाल जमाना बदल गया है और इतना भी बदल गया है कि इसरो ने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की जिम्मेदारी एक महिला को सौंपी है। ऐसा नहीं कि इसरो महिलाओं से भेदभाव करती है, क्योंकि ये एक संस्था है जहां बहुत सारे अहम जिम्मेदारियां महिलाओं ने संभाली है, वो या तो चंद्रयान कार्यक्रम हो या जीसैट कार्यक्रम हो। इसी तरह मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की जिम्मेदारी डॉक्टर ललिता अंबिका को सौंपी है। डॉक्टर ललिता अंबिका ज्यादा बात नहीं करती हैं, लेकिन सिर्फ कुछ शब्दों में बीबीसी को बताया।
Of course, I'm excited and proud and
हम उत्साहित हैं, हमें गर्व है और हम इसको आगे ले जाएंगे। ये थे डॉक्टर ललिता अंबिका के शब्द। डॉक्टर सिवन का मानना है कि डॉक्टर ललिता अंबिका जैसे महिलाएं इसरो में न सिर्फ तकनीकी तौर से बल्कि प्रबंधक की तौर से भी कुशल हैं। डॉक्टर सिवन को भरोसा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम 2022 की समय सीमा को हासिल कर पाएगा। डॉक्टर सिवन ने बीबीसी को ये भी बताया कि अब जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा है, वो इस मामले में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
भारत के सुदूर दक्षिणी राज्य केरल में बीते कई दिनों से बारिश और बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ के कारण अभी तक 60 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। बीबीसी तमिल सेवा के हमारे सहयोगी प्रवीण अन्नामलई केरल में मौजूद हैं। भूमिका राय ने उनसे बात करके इस खबर पर और जानकारी मांगी।
इस समय केरल में हालात बहुत खतरनाक है, इस वजह से 10 और 12 दिनों के बारिश के बाद अभी केरल के बाढ़ में कम से कम 60 लोग अब तक मर चुके हैं। सिर्फ आज ही 25 लोग मरे हैं। केरल की नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वायनाड और मलप्पुरम में पूरी रात बारिश थी, इसलिए तो थोड़ा लैंडस्लाइड भी था, तो इसलिए तो अभी पूरा गवर्नमेंट और सब फोर्सेस अभी रेड अलर्ट में है। फिर उसके बाद अभी 7-8 डिस्ट्रिक्ट में स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हो चुके हैं, कल छुट्टी दे दिया, तो अभी का सिचुएशन थोड़ा खतरनाक में है।
केरल में जिस तरीके के हालात हैं, क्या इससे पहले भी कभी केरल में इस तरह की भयानक बारिश और बाढ़ का केरल ने सामना किया है?
नहीं, अभी तक रिकॉर्ड में कम से कम 50 साल में ऐसी बारिश तो नहीं है। इस बारिश के वजह से में पूरी केरल की सब डैम्स, अराउंड 27 डैम्स है, अभी पूरा का डैम्स का शटर्स खुला है। अभी ऐसे सिचुएशन इतिहास में नहीं है, मतलब सब लोग बोल रहे हैं 30 साल के पहले ऐसी फ्लड सिचुएशन थे, बट इसी खतरनाक सिचुएशन में नहीं थे। ये तो इतिहास में पहली ऐसी सिचुएशन है। अभी पूरा केरल के सब डिस्ट्रिक्ट में मुख्यमंत्री ने रेड अलर्ट घोषित किया है।
और राहत और बचाव कार्य की बात करें तो क्या स्थिति है?
NDRF यहाँ फुल डिप्लॉयमेंट में है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, पुलिस के साथ और फायर डिपार्टमेंट के साथ सब रेड अलर्ट में है। कोई शाम में कोई बारिश ज्यादा हो चुके मतलब लो लाइंग एरियाज में वार्निंग दे रहे हैं लोग को, मतलब घर खाली करके हाई लेवल एरिया पे आने के। फिर बाकी सब एफर्ट्स लोकल बॉडी के साथ मिलके, पॉलिटिशियंस और सिविक अथॉरिटीज के साथ सब मिलके लाइफ लॉस प्रिवेंट करने के लिए सब एफर्ट्स पूरी तेज से चल रहे हैं। सरकार ने अभी तक सिर्फ प्रिलिमिनरी डैमेज इवैल्यूएशन कर चुके हैं, अभी फुल डैमेज सिचुएशन को अभी तक इवैल्यूएशन नहीं किया। मुख्यमंत्री ने बोला डैमेजेस बहुत हो जाएगा। बारिश के वजह से कोची का एयरपोर्ट सैटरडे तक बंद हो चुके हैं।
केरल में बाढ़ की वजह से अभी तक कम से कम 60 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। और केरल में हमारे सहयोगी प्रवीण अन्नामलई से बात कर रही थी भूमिका राय। भूमिका राय तैयार हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों के साथ। बताएं भूमिका, आज क्या कह रहे हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार?
जी संदीप, लगभग सभी अखबारों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। और इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो अखबार ने अपने पहले पन्ने पर प्रधानमंत्री के भाषण के कुछ कुछ हिस्से को प्रकाशित किया है।
जैसे?
मसलन कश्मीर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सोच की तारीफ, 50 करोड़ लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं और बदलता भारत। साथ ही अखबार ने 2022 तक अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की बात को भी पहले पन्ने पर जगह दी है। और इसी से जुड़ा एक कार्टून भी छापा है, बहुत छोटा सा कार्टून है, लेकिन वो कार्टून है जिसमें नरेंद्र मोदी के स्केच के साथ उन्हें अंतरिक्ष का नागरिक बताया है। तो एक ये छोटा सा कार्टून भी है। इसके अलावा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नाजुक हालत की खबर भी लगभग सभी अखबारों में है और पहले पन्ने पर है। अगर बात करें तो केरल में तेज बारिश और बाढ़ से जुड़ी खबर भी लगभग हर प्रमुख अखबार में है।
एक तस्वीर नजर आ रही है
जी, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक नवजात बच्चे को लेकर के जाता हुआ एक बचाव कर्मी है।
सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह के वीडियो भी देखने को मिल रहे हैं जिसमें घरों में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और उसमें भी लोग वीडियो शूट करके शेयर कर रहे हैं।
जी हाँ, बाढ़, भूस्खलन और तेज बारिश के चलते अब तक 60 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं यहाँ पे। और इसके अलावा एक गुड न्यूज़ की बात करें तो दिल्ली के चिड़ियाघर में दो शावकों का जन्म हुआ है, तो ये आज की एक अच्छी खबर है जिसको सुनकर के शायद चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, जैसे आपकी आ रही है।
देखने जाएंगे आप?
बिल्कुल, साथ चलते हैं। और हिंदुस्तान टाइम्स ने पूर्व पत्रकार आशुतोष के आम आदमी पार्टी छोड़ने की खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी
है। वजह बताइए
इसमें जगह, अभी वजह तो नहीं, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से अपना इस्तीफा दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया और उन्होंने भी ट्वीट के माध्यम से ही बोला कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम कैसे स्वीकार कर लें। और द हिंदू ने पूर्व भारतीय कप्तान अजीत वाडेकर के निधन की खबर को प्रकाशित किया है, उनकी उम्र 77 साल थी। इसके अलावा एक खबर और है जो दिल झकझोरने वाली है वाकई। दैनिक हिंदुस्तान ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पिकनिक मनाने गए 12 लोगों के नदी में बह जाने की खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। इसमें 30 लोग जो है वो चट्टानों के बीच में फंस भी गए थे और रात भर बचाव कार्य रहा, लेकिन काफ़ी अंधेरा था इसलिए उसमें इतनी तेज़ी नहीं आ पाई और बचाव कार्य अब भी जारी है।
बहुत शुक्रिया भूमिका। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि लीरा किस देश की मुद्रा है? लीरा में गिरावट की वजह से वो कौन सा देश है जो इन दिनों बुरी तरह परेशान है और क्या वजह है कि उस देश के राष्ट्रपति, जो काफ़ी शक्तिशाली माने जाते हैं, हालात को संभाल नहीं पा रहे? इन तमाम सवालों के जवाब खोजने की कोशिश दुनिया जहान में आदर्श राठौड़ की जुबानी।
दुनिया जहां
ve bunlara karşı en önemli cevabı milletçe hep birlikte verin. Var mıyız buna? Evet. Hazır mıyız buna? Evet.
ये आवाज थी तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगान की, जो एक कार्यक्रम में मौजूद लोगों से पूछ रहे थे कि क्या वो अपने पास रखी विदेशी मुद्रा और सोने को तुर्की की मुद्रा लीरा में बदलवाने के लिए तैयार हैं। समर्थकों की भीड़ से आवाज आई, हाँ हम तैयार हैं। इस तरह की नौबत इसलिए आ गई क्योंकि तुर्की की मुद्रा लीरा में पिछले एक साल में 40% की गिरावट आई है। 16% गिरावट तो एक हफ्ते में ही आ गई। पिछले कुछ सालों से तुर्की की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है। पिछले साल तो ग्रोथ रेट 7% रहा, लेकिन एक साल में ऐसा क्या हो गया कि उत्साहजनक प्रदर्शन कर रही तुर्की की मुद्रा में अचानक कमजोरी आ गई। तुर्की की अंकारा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर ओमेर अनस कहते हैं कि अमेरिका के दबाव के कारण ऐसा हो रहा है।
बहुत दिनों से तेल के दाम जो नीचे जा रहे थे और उसका फायदा तुर्की को मिल रहा था, और तुर्की ने यूरोप जाने वाली गैस पाइपलाइन तुर्की से गुजरती हैं, ईरान को कनेक्ट करती हैं, उसका फायदा सीधे तुर्की को मिलता था। लेकिन जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, उसके बाद से ही उन्होंने ईरान को लेकर के अपनी नीति बहुत ही सख्त कर ली है और ईरान के ऊपर दबाव बनाने लगे हैं। रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बन गया है, उसकी वजह से चाइना के ऊपर दबाव बनाया गया है, और अब टर्की के ऊपर भी ये बैन एक दबाव बनाया गया है कि वो 20% एक्स्ट्रा उनको टैक्स स्टील के जो है उस पर देने पड़ेंगे। तो इन सब चीजों को लेकर के टर्की के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव आया है, और इसकी वजह से ये मुद्रा का जो एक बहुत ही अचानक प्रभाव पड़ा है, जिसको हम लोग करेंसी क्रैश कह रहे हैं, वो सामने नजर आ रहा है।
अमेरिका और तुर्की पुराने सहयोगी रहे हैं। उनका आपसी सहयोग दूसरे विश्व युद्ध के दौर से शुरू हुआ। तुर्की 1952 से नेटो का हिस्सा भी है। तो क्या दोनों देशों के रिश्ते एक साल में ही बदल गए? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मध्य पूर्व मामलों के प्रोफेसर आफताब कमाल पाशा बताते हैं कि इसकी शुरुआत आज से 16 साल पहले ही हो गई थी।
2002 से जब से ये जस्टिस और डेवलपमेंट पार्टी एर्दोगान की AK पार्टी जो कहलाती है सत्ता में आई है, इन्होंने कई कदम उठाए। पहला तो उन्होंने ये लोगों को बताया तुर्की के कि ये इस्लामिक पार्टी है, और जो सेक्युलरिज्म 1923 से जो अतातुर्क के जमाने से तुर्की में था वो ढकोसला है। और 2003 में जब अमेरिका इराक पे हमला किया, वो तुर्की के जरिए फौज भेजना चाहते थे, एर्दोगान पर्सनली ने उन्होंने खिलाफ किया और वहां से जाने नहीं दिया। और उस दौरान से हर एक कदम उनका जो उठाया गया है, जो नाटो के खिलाफ था या तो अमेरिका के खिलाफ डायरेक्टली था।
साल 2016 में तुर्की में एक सैन्य विद्रोह हुआ था, जिसमें एर्दोगान के तख्ता पलट की नाकाम कोशिश की गई थी। इसी साल तुर्की में लंबे समय से काम कर रहे अमरीकी पादरी एंड्रयू ब्रंसन को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस दौरान अमेरिका ने एंड्रयू को रिहा करने की मांग की थी, और तुर्की ने ये मांग नहीं मानी तो उसने प्रतिबंध लगा दिए। प्रोफेसर ओमेर अनस मानते हैं कि तख्ता पलट की घटना के बाद बहुत सारी चीजें बदली हैं।
एंड्रयू ब्रंसन, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मुख्य मुद्दा है दोनों देशों के बीच में, मेरा ख्याल है कि सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, बल्कि अगर आप देखेंगे कि 2016 में जब राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को हटाने के लिए फौजी बगावत हुई थी, तो उस फौजी बगावत के खिलाफ रूस ने जितना साफ मत व्यक्त किया था और उसको रिजेक्ट किया था, लेकिन उसी वक्त अमरीका ने, जो कि इसका नाटो अलाई भी है, उसने जो पोजिशन ली थी वो बहुत ही डामाडोल थी। रजब तैयब एर्दोगान और उनकी पार्टी, तब से अमरीका को लेकर के एक अविश्वास का माहौल बन गया है।
तुर्की और यूरोप के कई देशों के बीच कारोबारी रिश्ते हैं, और उनके निवेशकों का एक दूसरे के यहाँ भारी निवेश भी है। ऐसे में अगर लगातार तुर्की की मुद्रा गिरती रहती है तो उससे पश्चिमी अर्थव्यवस्था भी खासी प्रभावित होगी। प्रोफेसर आफताब कमाल पाशा बताते हैं कि अभी तो तुर्की को सिर्फ चेतावनी दी जा रही है।
ज्यादा प्रेशर तुर्की पर नहीं डालना चाहते हैं, जिससे यूरोप और अमेरिका और उनके साथियों का नुकसान और बढ़ता जाए। तो ये वार्निंग दे रहे हैं अमेरिका और यूरोप वाले कि आप सुधर जाइए, नहीं तो और बुरे दिन आपको सामना करना पड़ेगा।
क्या तुर्की की खराब आर्थिक हालत के लिए बाहरी हालात ही जिम्मेदार हैं? अरदोगान इस साल जून में हुए चुनावों में 52% से ज्यादा वोट हासिल करके दोबारा राष्ट्रपति चुने गए थे, लेकिन उनकी अपनी नीतियां भी कुछ ऐसी रही हैं जिनके कारण उनकी आलोचना होती है, जैसे कि अपने दामाद को वित्त मंत्री बनाना। अगर अमेरिका का दबाव बढ़ता रहा तो क्या अरदोगान अपने देश को इन हालात से बाहर निकाल पाएंगे? उन्होंने देशवासियों से सहयोग की अपील की है, क्या उन्हें जनता का समर्थन मिल पाएगा? प्रोफेसर आफताब कमाल पाशा बताते हैं कि इसकी संभावना कम ही है।
वो जो है 52% या परसेंटेज से ही उनको विक्ट्री हुई, जो कि ऑलमोस्ट आधा तुर्क उनको सपोर्ट नहीं करता रहा है, रेफरेंडम में हो या इलेक्शंस में हो या दूसरे अन्य स्टेप्स में। तो वो तुर्की जो है पोलराइज हो गया है सेकुलरिस्ट और इस्लामिस्ट के बीच में, सपोर्ट ये पब्लिक से मांग रहे हैं। ये सिर्फ 50% जिन्होंने उनको वोट दिया या सपोर्ट दिया नेशनलिज्म के बेसिस पे, शायद डॉलर के मामले में या सोना चांदी जो भी रखे हैं उसके मामले में मदद करेंगे, लेकिन वो काफी नहीं होगा।
इस पूरे विवाद का एक और पहलू है सीरिया में चल रहा गृह युद्ध। जब से सीरिया के कुर्द विद्रोहियों ने अलग कुर्दिस्तान राष्ट्र की मांग उठाना शुरू किया, तुर्की को ये बात पसंद नहीं आई। प्रोफेसर ओमेर अनस,
अमेरिका ने सीधे तौर पर जो कुर्दिश बागी हैं सीरिया के उनको सीधा समर्थन दिया है, उसमें जो अपना नाटो अलाई है तुर्की को भी विश्वास में ले लिया है, जिसकी वजह से जो बहुत सारे बड़े हथियार जो हैं वो कुर्दिश विद्रोहियों के हाथ में सीधे तौर पर दिए गए हैं। तुर्की ने साफ कर दिया कि वो इन कुर्दिश विद्रोहियों के खिलाफ वो अकेले ही कार्रवाई करेगा, चाहे उसमें अमेरिका उनका साथ दे या न दे।
इस मामले में ईरान के साथ साथ इसराइल और फलस्तीन का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर आफताब कमाल पाशा मानते हैं कि तुर्की चाहे तो ईरान पर लगे प्रतिबंधों को बेअसर कर सकता है और साथ ही इसराइल और फिलिस्तीन के मामले पर भी दिक्कतें पैदा कर सकता है, क्योंकि उसने हाल ही में इस्लामिक देशों के बीच अपना प्रभाव बढ़ाया है।
ये जो तुर्की का पोजीशन है अमेरिका के खिलाफ जा सकता है, क्योंकि जो भी लीकेज होगा सैंक्शंस में ईरान के खिलाफ तुर्की उसको बेअसर कर देगा, वो क्योंकि हर चीज जो ईरान चाहता है तुर्की के जरिए और उसके जरिए चीन के जरिए आ सकता है।
अरदोगान 2 साल से कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके तुर्की की अर्थव्यवस्था को पश्चिमी अर्थव्यवस्था से हटाकर एशियाई इकोनॉमी के तौर पर उभारा जाए। इसी कारण अरदोगान लगातार चीन, रूस और भारत की तरफ देख रहे हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि अपने पुराने दोस्त अमेरिका से एकदम दूर होना तुर्की के लिए आसान नहीं है। हालांकि ये दोनों ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां से शायद वो अपने रास्ते अलग करने वाले हैं। ऐसे में जब तक तुर्की और अमेरिका के बीच की ये तनातनी खत्म नहीं होती, तब तक लीरा में सुधार होने की गुंजाइश कम ही है।
आदर्श राठौर की प्रस्तुति। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं हॉकी के मैदान पर, जहां पर टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीद के साथ भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें 18वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीद लिए इस प्रतियोगिता के लिए रवाना हो चुकी हैं। भारत की 18 सदस्यीय महिला टीम अपने अभियान की शुरुआत पूल बी में मेजबान इंडोनेशिया के खिलाफ 19 अगस्त को करेगी, जबकि पुरुष टीम इसके एक दिन बाद अपने खिताब का बचाव करने का अभियान इंडोनेशिया के खिलाफ ही शुरू करेगी। पिछली बार एशियाई खेलों में महिला टीम कांस्य पदक ही जीत पाई थी। महिला टीम को पूल बी में मेजबान इंडोनेशिया के अलावा कोरिया, थाईलैंड और कजाकिस्तान के साथ रखा गया है। दूसरी तरफ पुरुष टीम को मेजबान के अलावा कोरिया, जापान, श्रीलंका और हांगकांग के साथ रखा गया है। आपको बता दें इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 18वें एशियाई खेलों की शुरुआत के लिए अब मात्र 2 दिन बचे हैं।
और सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुनते हैं भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। काबुल में एक शिक्षा संस्थान के पास हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 48 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 60 लोग घायल हुए हैं। मुरांडी ब्रिज हादसे के बाद उत्तरी लिगुरिया प्रांत में 12 महीने के लिए आपातकाल स्थिति की घोषणा कर दी गई है। न्यूजीलैंड की संसद ने बहुत से विदेशियों के लिए न्यूजीलैंड में घर खरीदने पर रोक लगा दी है, हालांकि इसमें ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के नागरिक शामिल नहीं हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समय अनुसार समय जानते हैं आप 7:30 PM। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए अनुमति और पल पल बदलती खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। नमस्कार।